Ladies and gentlemen, good day and welcome to Surya Roshni Limited Q2 FY26 earnings conference call. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero. On your touch-tone phone, please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Raju Bista, Managing Director of Surya Roshni Limited. Please go ahead.
Thank you very much. Good evening, everyone. On behalf of Surya Roshni Limited, I extend a very warm welcome to everyone for joining us today. On this call, we are joined by my colleague, Mr. Vinay Surya ji, MD, Surya Roshni Limited, and Mr. B.B. Singhal, CFO and Company Secretary, Mr. Gaurav Jain, CEO, Steel Operations, Mr. Vasumitra Pandey, CEO for Lighting and Consumer Durable segment. Also, Mr. Naresh Singhal, who is our Executive Director for Steel Operations, and SGA, our Investor Relations Advisor. Moving on to the overall financial performance of the company, in Q2 FY26, our consolidated revenue grew 21% year-on-year to 1,845 crore, while the EBITDA rose 69% to 141 crore, with the margin improving to 7.6%. PAT is more than doubled, rising 117% year-on-year to 74 crore, driven mainly by better realization, product mix, and operating leverage. Our steel pipe and strip business reported about 24% revenue growth year-on-year, led by strong export and higher share of value-added product. Exports business were up by 45%, helping us achieve the highest-ever Q2 volume in the company history. EBITDA more than doubled to 102 crore, and profitability per ton improved by 73% year-on-year to about 5,013 rupees per ton. The lighting and consumer durable business continued to deliver steady growth, with revenue up by 10% year-on-year to about 434 crore, supported by festive demand and double-digit volume growth in LED lamps, battens, and street light segments. Margin expanded to about 9% from 7.7% in Q1, reflecting better mix efficiency gain and cost control. We are a zero-debt company with a net cash surplus of 250 crore as of September 30, 2025, and the Board of Directors has also declared an interim dividend of 2.5 rupees per share, reflecting our continued commitment to shareholder value creation. Now, coming to lighting and consumer durable, in Q1 FY26, our lighting and consumer durable segment delivered a healthy performance, growing 10% year-on-year, supported by improved festive season demand and healthy contribution for both lighting and durable segment. EBITDA margin expanded sharply to 9% from 7.7% in this quarter, reflecting better operating leverage, a superior product mix, and disciplined cost management despite continued pricing pressure in few LED categories. The professional lighting business also maintained its strong momentum, growing by 25% in Q2 FY26, mainly driven by healthy demand across solar, facade, industrial and outdoor lighting segments. The order book remained robust at over 150 crore for lighting, providing good visibility for the coming quarter as well. We remain confident to achieving our full year guidance for the lighting and consumer durable business to a top line in the range of about 1,900 crores and EBITDA of about 180 crore. Looking ahead, our focus will remain on driving innovation, expanding our product portfolio, and deepening our distribution and exploring new avenues of growth in adjacent areas such as renewable energy. Now moving on to the steel pipe and strip segment. In Q2 FY26, our steel pipe and strip segment delivered a strong performance marked by a healthy rebound in volume and a significant improvement in profitability despite on overall challenging operating environment. Revenue for the quarter grew by 24% year-on-year to 1,411 crore, mainly driven by a 26% increase in overall volume and a richer product mix. EBITDA for the quarter more than double year-on-year to about 102 crore with margin expanding sharply on the back of the better realization, disciplined pricing and improved operating leverage. On a per ton basis, EBITDA stood at 5,013 rupees, representing a 73% year-on-year increase and a 72% improvement. Despite some pressure from falling steel price in July, our inventory was efficiently managed. And notional inventory loss of about 500 rupees per ton was largely offset through higher operating efficiency and realization. We achieved the highest ever second quarter volume in the company history of steel segment. From an operational standpoint, capacity utilization stood at about 80% during the quarter. Our export performance was particularly strong, recorded a 45% growth in volume and 29% increase in value terms year-on-year basis. Within product categories, API pipes grew by nearly 86% year-on-year, supported by robust demand from mainly private oil and gas player, while cold rolling and strip segment continue to perform well following the commissioning of new Bahadurgarh mill. However, demand from GI pipe was largely catered to the agriculture segment was impacted by the extended monsoon and delay in government fund releases, particularly to state agencies, which slow rural and infrastructure project execution. We also maintained a healthy book of around 750 crore comprising order from oil and gas segment, water and export segment as well, providing strong visibility for the second half of the year. With a solid order book, operational efficiency and new capacity coming on stream, we are well positioned to sustain performance improve in coming month as well. Accordingly, we have prudently recalibrated our full year volume guidance to around 10 lakh ton, reflecting a balanced outlook grounded in realistic near-term demand trends and the visibility of strong execution in the second half. Now, I would like to request our CFO, Mr. B.B. Singhal, to share his thoughts on some financial numbers. Thank you.
Thank you, respected MD sir, and a very good afternoon to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was 1,845 crore as compared to 1,529 crore, a growth of 21% year-on-year basis. EBITDA and PAT stood at rupees 141 crore and rupees 74 crore as compared to rupees 83 crore and rupees 34 crore, a growth of 69% and 117% year-on-year basis, respectively. For the first half FY26, the revenue was rupees 3,450 crore as compared to rupees 3,422 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 223 crore and rupees 108 crore as compared to rupees 242 crore and rupees 127 crore respectively. In lighting and consumer durables, for the quarter, the revenue stood at rupees 434 crore as against rupees 395 crore, a growth of 10% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 39 crore and rupees 29 crore, a growth of 10% and 11% Y-on-Y basis, respectively. For H1 FY26, the revenue stood at rupees 832 crore as against rupees 781 crore, a growth of 7% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 70 crore and rupees 51 crore as compared to 70 crore and rupees 52 crore respectively. In the steel pipes and strips, during Q2 FY26, the revenue was 1,411 crore as compared to 1,135 crore, a growth of 21.4% Y-on-Y basis. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 5,013 compared to rupees 2,901, a growth of 73% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 102 crore and rupees 70 crore as against 48 crore and rupees 20 crore, a growth of 113% and 258% Y-on-Y basis, respectively. For H1 FY26, the revenue was 2,618 crore as compared to 2,643 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 4,037 compared to 4,653 rupees. EBITDA and PBT stood at rupees 154 crore and rupees 95 crore as against rupees 172 crore and rupees 117 crore respectively. Improved capacity utilization, working capital optimization and cost rationalization enabled us to become a zero debt company, and having a cash surplus fund of rupees 246 crore in H1 FY26. In Q2 FY26, our net working capital cycle was 63 days with a ROCE of 16.646% and a return on equity ROE of 11.90%. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you.
Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one in their touchtone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Viraj Mehta from Enigma Investment Partners LLP. Please go ahead.
Yeah, hello. Thank you, Rajiv. Sir, my first question is that we have roughly 3.8 lakh tons kiya hai first half. And you are saying that we have 8 million tons. So, you are saying that we 6,20,000 टन क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में मिला के कर लेंगे?
नहीं, आप ऐसा ग्रोस हमने 4,10,000 टन किया है Q1 Q2 मिला करके, और Q3 में करीब 260,000 टन है और Q4 में 3 लाख टन का है, तो 980 के आसपास जो है पूरे साल का वॉल्यूम रहेगा, जो ओरिजिनली हमने 10.5 लाख टन सोचा था, तो ये रिवाइज कर रहे हैं 60-70,000 टन कैपेसिटी। जो हमने जो Q1 के अंदर में जो शॉर्टफॉल हुआ था उस कुछ तो कवर किया, लेकिन कुछ वो रह जाता है।
श्योर। सर दूसरा क्वेश्चन है, आपने एक्सपोर्ट में बताया कि हमारा काफी अच्छा ग्रोथ था, तो आपको जो US से ऑर्डर मिला था तो सर उसमें कुछ रिपीट ऑर्डर मिलेगा? US की अपॉर्चुनिटी का सस्टेनेबल बेसिस पे थी कि वो वन ऑफ है, आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे?
सी US वाज वन ऑफ एंड मेजरली इस बार जो हमको वॉल्यूम जो मिला है यूरोपियन कंट्री और कनाडा से है। तो वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज कनाडा के अंदर में और मिडल ईस्ट में अपना ओवरऑल जो है ब्रांड को काफी लोग पसंद करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी एक्सपोर्ट के अंदर में अच्छी ग्रोथ रहेगी।
राइट।
जहां तक अमेरिका का विषय है, अभी सब कुछ बहुत कंफ्यूजन में है और इंक्वायरीज वगैरह तो लगातार आ रही है, बट अभी ऐसा जो है एक बार 2-2.5 हजार टन हमने माल भेजा, फिर उसके बाद ऐसा कोई मतलब बहुत फ्रूटफुल अभी तक कोई चीज बनी नहीं है, तो हम लोग अभी उसको थोड़ा देख ही रहे हैं कि क्या हो सकता है।
राइट। और सर मेरा आखिरी दो क्वेश्चन है, एक थोड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम 2 साल से ये बोल रहे हैं कि 1 मिलियन 1.1 मिलियन कर लेंगे, फिर साल के बीच में आके हमें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, फिर जब 2 साल से ये 1 मिलियन टन पहुंचने की चेष्टा तो कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ कमी रह जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि हम सोचना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, नई न्यूज डाल रहे हैं, बट वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो मतलब कहीं ना कहीं अटक रहे हैं हम लोग।
नहीं ऐसा है विराज जी, आपकी बात एकदम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हम टारगेट तो हमेशा जो है बड़ा ही लेते हैं और बड़ा सोचना ही चाहिए, लेकिन कई सारे फैक्टर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वार्टर में हमें उम्मीद थी कि स्टील में जो 24% की ग्रोथ है उसके बजाय 35% ग्रोथ होगी, बट अचानक जो है GST में जो कटौती हुई मेनली ऑन सीमेंट, हमें तो बहुत इसका फर्क पड़ा नहीं, तो अब पाइप के साथ स्टील के साथ जो भी चिपक के जाता है वो तो सीमेंट ही जाता है, तो 1 महीने की बाइंग रुक गई, वो एक रीजन था। दूसरा बड़ा रीजन ये था कि थोड़ा एक्सटेंडेड मॉनसून होने के कारण ओवरऑल वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट वगैरह में तो ग्रोथ है, लेकिन एग्रीकल्चर सेगमेंट उस हिसाब से इस बार उतना चला नहीं जितना जो है चलना चाहिए था। और तीसरा रीजन ये है कि इस साल शुरू से ही हम जो देख रहे हैं जितना हमारे स्पाइरल और ऑयल एंड गैस के अंदर में लास्ट ईयर हमने किया था उसके कंपेरिजन में ऑर्डर बैंक थोड़ा एग्जीक्यूशन लेवल पे कह लीजिए गवर्नमेंट लेवल पे वो PSU में थोड़ा कम है, बट उसको संभाव एक्सपोर्ट से और डोमेस्टिक मार्केट से जो है हम कवर कर रहे हैं, तो इफ एंड बट कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट ओवरऑल जो इंडस्ट्री का 8-10% का ग्रोथ है उस मोमेंटम को हम मेंटेन कर पा रहे हैं।
राइट सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ,
सेकेंड हाफ हमेशा हमारा H1 से H2 हमेशा बेटर रहता है लाइटिंग में भी और स्टील पाइप के अंदर में भी, और उसी हिसाब से हमारे जो थोड़े रिवाइज टारगेट भी उस हिसाब से हमने सेट किए हैं, और ये भी हम जो कर सकते हैं रूटीन के, इस बीच में कई सारी चीजें ऐसी चलती रहती है मतलब, और कुछ चीजें अगर आ जाए तो एक ही क्वार्टर हमारे लिए काफी कुछ इम्प्रूव करने के लिए बन जाता है, सो ये सब है।
नहीं नहीं, थैंक यू सो मच सर। दूसरा सर, अपन लाइटिंग में देखे तो आप जो 1900 करोड़ बोल रहे हैं और 180 करोड़ का एबिटा बोल रहे हैं, बट सर हमारा फर्स्ट हाफ का एबिटा खाली 70 करोड़ है, तो क्या हम 110 करोड़ एबिटा कर रहे हैं सर सेकंड हाफ में? मतलब कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्जिन का, स्पेशली मार्जिन का इन लाइटिंग?
ऐसा है कि लाइटिंग में हमेशा से जो है जो कॉन्फिडेंस आता है ना फेस्टिवल सीजन से आता है, दिवाली से आता है, क्रिसमस से आता है और मार्च क्लोजिंग से आता है, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक ये बारिश का समय रहता है और लंबे दिन रहते हैं जिसमें लाइटिंग लोग कम यूज करते हैं, और ग्रेजुअली जैसे जैसे विंटर सीजन फेस्टिव सीजन की तरफ आते हैं इसमें ओवरऑल बिक्री बढ़ जाती है, तो हमेशा जो है वो 35-40% से लेकर के बैलेंस जो है 60-65% की रेवेन्यू जो है वो सेकेंड हाफ में ही आती है। सो सिमिलरली अब आप इसमें भी आप देखेंगे लाइटिंग के अंदर में भी जैसे इबिटा हमारा 7.7% का था, मतलब Q1 के अंदर में इम्प्रूव होकर 9% रहा। और दूसरा बड़ा ये था कि हमने जो वायर बिजनेस लॉन्च किया है, अभी हम 3 रीजन्स के अंदर में ऑल इंडिया कर चुके हैं और इस महीने से जो है उसकी फुल प्रोडक्शन भी मिल रही है, तो 150-200 करोड़ का बिजनेस इस साल में, इस 6 महीने में हम लोग कर रहे हैं, तो उसका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा। और जो है लाइटिंग के अंदर में भी जो हमने प्लान बनाया था 180-185 करोड़ के आसपास का इबिटा करने का टारगेट एज इट इज अभी रखा हुआ है।
बराबर है सर। आखिरी क्वेश्चन था ऑन स्टील पाइपिंग कि जैसे अपना बड़ा विजन है सर कि 2 मिलियन टन की कैपेसिटी तक पहुंचना है, 1.5-2 मिलियन का प्रोडक्शन और सेल करना है, वो अब 2 मिलियन तक एक कब तक मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में पहुंच जाएंगे? और दूसरा आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा और फास्टर ग्रोथ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये?
नहीं, ग्रोथ मुझे लगता है कि अब H2 से लेकर के आने वाले समय में मुझे लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट ने GST में कटौती की है और जो है हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम और हर घर जल को भी एक्सटेंड किया है, ओवरऑल कैश की जो है अवेलेबिलिटी आम पब्लिक के हाथ में ज्यादा रहेगी, तो मुझे लगता है उसका डाउन द लाइन सबको उसका एडवांटेज मिलेगा और उसी में हमको भी लाइटिंग में भी स्टील पाइप में भी वो उसका कारण जो है वो एडवांटेज देखने को मिलेगा। और जहां तक अभी आपने जैसे बताया कि ऑलरेडी जो है हम करीब 13.5 लाख टन की कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं, इस साल जो हमने बहादुरगढ़ प्लांट में जो 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोल्ड रोलिंग में किया था तो उसमें करीब साल में 36,000 टन की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। ग्वालियर में स्पाइरल प्लांट में करीब 50 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था 60,000 टन साल का जो है वो कैपेसिटी हमारी वह इंक्रीज हो चुकी है। अब ये करीब करीब जो है 90-1 लाख टन की कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है और उसके अलावा जो है 3 प्लांट के अंदर में भुज में करीब जो है 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो ऑनगोइंग है जिसमें 60,000 टन की कैपेसिटी बढ़ रही है। बहादुरगढ़ पुरानी फैक्ट्री में एक मिल करीब उसमें 36,000 टन की कैपेसिटी बढ़ रही है, एक ग्वालियर में एक DFT लाइन आ रही है उसमें भी 36,000 टन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ये करीब 1,25,000 टन का जो है वो अगले इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक या अगले साल के Q1 तक ये कैपेसिटी हमारी 1.25 लाख टन की इम्प्रूव हो जाएगी। और बाकी जो है कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसमें हिंदुपुर और एक लोकेशन पे और काम चल रहा है, तो वो ऑलरेडी मतलब मशीन और प्लांट मशीनरी फाइनलाइजेशन की स्टेज पे है, उसमें करीब जो है ये 15 लाख टन से बढ़ करके हमारी करीब 20 लाख टन हो जाएगी, उसमें करीब 5 लाख टन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो ग्रीन फील्ड है वो अगले साल भर में करीब 25% कैपेसिटी होगी और फिर नेक्स्ट 1.5 ईयर्स के अंदर में जो है वो पूरी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हो जाएगी। तो उस हिसाब से मतलब इसमें कैपेसिटी आने से ये भी होगा थोड़ा रीजनल हमारी जो है लोकेशन का एडवांटेज मिलेगा, तो जिसमें थोड़ा लो मार्जिन रहता है लेकिन जिसमें ग्रोथ है, मेनली हमारा उसमें ये भी टारगेट है कि सेक्शन और इन सब सेगमेंट को भी हम कैटर कर पाए मतलब हमारा वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट के साथ साथ, तो इस तरह से हमारा प्लान है अगले 1.5-2 साल के अंदर में करीब 1.95 मिलियन टन के आसपास जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारी।
और सर जैसे सेकंड हाफ में जैसे अभी अपना अगर 200,000 जैसे अभी 2 लाख में अगर हम 5,000 रुपए एबिटा पर टन कर रहे हैं और आप बोल रहे हो
प्लीज जॉइन द क्यू, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, In order to ensure the management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit yourselves to two questions per participant. Should you have any follow-up question, you may rejoin the queue. The next question is from the line of Rachna from Simple. Please go ahead.
Hello. Hello. Hello, am I audible?
Good evening, sir.
Sir, with the BEE transition in the fan industry, jo Jan 26 mein aa raha hai, so how are we planning to take price increases in fans category? And given that the current competitive intensity is high in fans, so how do you see the inventory levels shaping up across channels?
So, ऐसा है कि हमने BE के हिसाब से स्टार रेटिंग के हिसाब से हमने सब अपने प्रोडक्ट को जो है अपग्रेड कर दिया है. हेलो.
हाँ,
तो अपग्रेड कर दिया है और इन्वेंट्री हम लोग करीब करीब जो है वो क्योंकि हम मेनली 100% के आसपास ही आउटसोर्स करते हैं तो हम कुछ 15 दिन के इन्वेंट्री ही कैरी करके चलते हैं तो इन्वेंट्री का बहुत इश्यूज उसके कारण नहीं आएगी. वो ऑलरेडी मतलब हम 6 महीने से ही उस पे काम कर रहे थे.
ठीक है सर. और प्राइस हाइक्स के बारे में आपका क्या विचार रहेगा?
नहीं, रेगुलर बेसिस पे जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्राइस के अंदर में मार्केट के अंदर में प्राइस जो है हम पास ऑन कर लेते हैं. सो ओवरऑल नॉट ओनली फैन एंड अप्लायंसेस, ओवरऑल इस कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर में जो है मतलब जो भी है वो मतलब पास ऑन हो जाता है. और बी की वजह से जितना भी 10-12% का प्राइस इंक्रीज आएगा वो मार्केट में ऑलरेडी जो है वो पास ऑन हो चुका है.
okay,
क्योंकि वो अक्रॉस द इंडस्ट्री होता है, सिर्फ हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो उसी हिसाब से उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है.
ठीक है सर. तो सर आपने बोला 10-12% प्राइस हाइक आप लोगे, तो
Every,
ले चुके हैं कि लेने वाले हैं?
नहीं नहीं, वो 1 जनवरी से मतलब जो है एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो मार्केट के अंदर में ऑलरेडी जो है वो अनाउंसमेंट हो चुका है.
अच्छा ठीक है. ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा इन्वेस्टर पीपीटी है उसमें हमने लिखा. हेलो. या दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन, प्लीज लेट मी स्पीक, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन. हेलो.
यस यस, गो अहेड.
हाँ, थैंक यू. जो हम लोग ने इन्वेस्टर पीपीटी में लिखा है कि इन लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कि वी हैव इकोसिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस टू कैप्चर फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स एंड कैटेगरीज, तो इस पे आप थोड़ा और कलर दे सकते हैं कि कौन से चैनल हम इस्तेमाल करने वाले हैं ग्रोथ के लिए, कौन से की मार्केट होंगे और कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगे? और यहाँ तक कि हमने ये भी लिखा है कि मिक्सर ग्राइंडर्स में ये बार अच्छा ग्रोथ आया, तो एज अ कैटेगरी मिक्सर ग्राइंडर्स हमारे लिए कैसा परफॉर्म किया है और हमारी क्या उम्मीद है ये आगे के साल के लिए?
देखिए, ओवरऑल जो है दिवाली के अंदर में देश भर में बम्पर सेल हुई है और उसके कारण जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर में भी वो ग्रोथ जो है सिग्निफिकेंटली देखने को मिला, पार्टिकुलरली जहां तक जो है अप्लायंसेस डिवीजन है उसके अंदर में, चाहे वो होम अप्लायंसेस की कैटेगरी हो जिसमें मिक्सी ग्राइंडर से लेकर के और तमाम चीजों का. सो ऐसा है कि लाइटिंग बिजनेस के अंदर में ये एक कंटिन्यूस जो है कुछ न कुछ इनोवेशन मांगता रहता है. सो रेगुलर बेसिस पे इनोवेशन R&D रूटीन पे चलता रहता है, उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को जो है नए नए कैटेगरीज और डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं. सो वो अक्रॉस द टेबल, चाहे लाइटिंग में जो है लाइटिंग का बिजनेस हो, चाहे फैन का हो, चाहे जो अप्लायंसेस का हो, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस रह गया है तो इसीलिए जो है अपेरेंस से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के और प्रोडक्ट के अंदर में वैल्यूड एडिशन जो है पूरी करीब 25-30 लोगों की इंजीनियरिंग की टीम रूटीन में जो है R&D सेंटर में डे नाइट वो काम करती रहती है. तो जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसी हिसाब से मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में बदलाव और चेंजेस करते रहते हैं.
ठीक है सर. बट मार्केट में आपने जैसे बताया, हम कौन सा चैनल पहले टारगेट करते हैं, क्या वो GT है कि ऑनलाइन है?
हमारा फोकस देखिए, हमारे करीब 2 लाख से ज्यादा दुकानदार है देश भर में जो इस प्रोडक्ट कैटेगरी को डील करते हैं और उसके अंदर में जो है 80% इलेक्ट्रिकल आउटलेट है. तो हमारा प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी फोकस में वही रहते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में दे जो इस चैनल में ऑटोमेटिकली जिसकी एक्सेप्टेंस रहेगी, या हमारे चैनल पार्टनर वगैरह जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहे हैं, तो आज हम ब्रांड वो प्रोडक्ट नहीं देते। फॉर एग्जांपल, पहले हम पंखा नहीं देते थे, वायर नहीं था, अप्लायंसेस नहीं था, फिर एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसके अंदर में ग्रोथ बहुत अच्छी है, जिसको प्रोफेशनल लुमिनेयर हम लोग बोलते हैं। क्यों, घरों के अंदर में पहले बल्ब ट्यूबलाइट लगती थी, तो आज जो है लुमिनेयर लगाने का ट्रेंड आ गया है। जहाँ पहले घरों के अंदर में 1000-2000 रुपए की लाइटें लगती थी, या 10 से 15 हजार रुपए एवरेज एक घर में लगने लग गई है, तो उस हिसाब से ही फिर जो है उसी प्रोडक्ट कैटेगरी और उसी चैनल्स को हम लोग फोकस करते हैं। और जहाँ तक ऑल इंडिया बेसिस पे जैसे 2 लाख से 2.5 लाख जो है, मतलब शॉपकीपर है हमारे, आउटलेट है, तो उसमें हम लोग देश भर में ये देखते रहते हैं कि कहाँ हमारी विजिबिलिटी प्रेजेंस स्ट्रांग है और कौन से एरिया ऐसा है जो अभी भी ग्रे है, जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं, या कंपटीशन की एक्टिविटी जहाँ कम है, तो वो रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपने चैनल पार्टनर के साथ मिल करके करते रहते हैं।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आंद्रे पुरुषोत्तम फ्रॉम कॉग्निटो एडवाइजर्स। प्लीज गो अहेड।
Yeah, I think you gave a guidance for your lighting division in terms of revenue and EBITDA. Could you give the same for the steels business as well, and so on, therefore for the total for this year?
Yeah, जैसे lighting में मतलब हम लोग करीब जो है 180-185 के आसपास का जो है हमारा revised target है, जिसमें Q2 39-40 करोड़ का था, तो Q3 के अंदर में विथ लॉन्चिंग ऑफ वायर प्रोडक्ट कैटेगरी और करीब जो है 55 करोड़ के आसपास रहेगा, और शायद Q4 में 11% EBITDA परसेंटेज रह करके 60 करोड़ के आसपास रहेगा। ऐसे 180-185 करोड़ के आसपास का लाइटिंग का है। सिमिलरली स्टील डिवीजन के अंदर में जो है करीब पर टन EBITDA हमारा इस बार जो है 5013 रुपए के आसपास था, और Q3 में होपफुली जो है 5600 से 5700 रुपए पर टन के आसपास रहेगा, और एक जो है मिनिमम साइड में Q4 वैसे तो ओवरऑल सेल ग्रोथ अच्छी होती है, एक्टिविटी ज्यादा होती है, बट हम लोग मान के चल रहे 5800 से 5900 के आसपास का EBITDA पर टन रहेगा। तो ऐसा करके करीब जो है 430-435 करोड़ के आसपास EBITDA स्टील डिवीजन का रहना चाहिए। सो ओवरऑल मुझे लगता है 620-625 करोड़ के आसपास का कंपनी एज ए होल साल भर का जो है हमारा रिवाइज नंबर रहेगा, जो हमने ओरिजिनली 700 करोड़ के आसपास का टारगेट किया था उसको थोड़ा हम लोग डाउन साइज कर रहे हैं।
और सर, जो एक्सपोर्ट्स में आपकी जो परफॉर्मेंस हुई है उसमें टैरिफ का भी कुछ योगदान है कि टैरिफ को बचाने के लिए वो डेडलाइन बचाने के लिए कुछ थोड़े ज्यादा?
आपने बहुत मेंशन वेरी राइटली, उसमें कुछ यूरोप के अंदर में उसका भी इम्पैक्ट है।
अच्छा, तो भी सर, ये एक्सपोर्ट्स के नंबर सस्टेनेबल है, आप क्या सोचते हैं?
सस्टेनेबल है, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा एक्सपोर्ट कम हुआ था, उस हिसाब से भी देखे तो जो है मार्केट के अंदर में ओवरऑल जो है डिमांड चाहे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हो या कनाडा से हो और मिडल ईस्ट के अंदर में जो है मतलब रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते रहते हैं, और अभी जहाँ तक देखे तो करीब 30-40 हजार टन का जो है ऑर्डर बुक भी ऑलरेडी हाथ में है।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ किरण फ्रॉम टेबल ट्री कैपिटल। प्लीज गो अहेड।
थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, मुझे EBITDA पर टर्न पे तो एक क्वेश्चन है, मे बी आई स्पीक नंबर्स इन इंग्लिश। सो एसेंशियली सर, हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हम लोग बोलते हैं कि लास्ट ईयर EBITDA पर टर्न वाज अबाउट 5400 राइट ओवरऑल, एंड GI पाइप्स डिड अबाउट 6500 EBITDA पर टर्न, ETI एंड स्पाइरल पाइप्स जो एक्सपोर्ट का है 9300 EBITDA पर टर्न, एंड ब्लैक पाइप से 4800 EBITDA पर टर्न। तो अभी जो हम लोगों ने H1 में किया है, बिकॉज एग्री इज डाउन एक्सपोर्ट इज अप, आई वॉज अज्यूमिंग बिकॉज एक्सपोर्ट इज अप एंड एक्सपोर्ट इज 9300 EBITDA पर टन, हमारा EBITDA सब्सटेंशियली हायर होगा। तो ये प्रोडक्ट मिक्स कैसे काम करता है सर, एंड इज इट लाइक ओवरऑल ईयर बेसिस पे देखना चाहिए कि H1 एंड H2 दो हाफ पे देखना चाहिए?
नहीं आप का मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं समझ पाया।
क्वेश्चन ये है कि जीआई पाइप, एपीएच स्पाइरल पाइप और ब्लैक पाइप का एबिटा पर टन हमारा 6,000-9,000 ऐसा और ब्लैक पाइप का 5,000 है सर। तो अभी हमारा कुल मिला के एच वन और एच टू, आपने जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट को उत्तर दिया है कि 5,800 जाएगा, तो मैं कुल मिला के करूँ तो अराउंड 4,500 आ रहा है एबिटा पर टन, राइट? एंड 10 लाख टन, सो देयरफॉर 450 करोड़ एबिटा। सो दैट इज द कैलकुलेशन दैट यू जस्ट सेड। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारा जीआई पाइप एबिटा पर टन बहुत हाई है, एपीएस स्पाइरल पाइप हाई है,
मतलब आपकी बात समझ गया। ऐसा है कि सी ओवरऑल जो है, मतलब ठीक है आपकी बात एकदम राइटली आपने पूछा, एक्सपोर्ट के अंदर में देखिए जीआई पाइप वगैरह है तो ऑब्वियसली उसमें एबिटा जो है पर्टन ज्यादा होना चाहिए उसके कारण। और सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि थोड़ा एक्सटेंडेड मॉनसून होने के कारण जो जीआई की सेल है डोमेस्टिक ट्रेड उसके अंदर में प्रेशर था, इसलिए थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने के कारण वो पर्टन इबिटा में जो एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता वो उस हिसाब से थोड़ा कम आया है। आई फुल्ली एग्री विथ यू।
गॉट इट। सर दूसरा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ स्टील आउटलुक, डू यू, जुलाई में प्राइस गिर गया था हमारा, थोड़ा इन्वेंट्री लॉस आ गया था, बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके बहुत लॉस कम कर दिया, तो आप अगले जो 6 महीने, ये तो महीना महीना चेंज होता है बट आपके हिसाब से अगले 6 से 8 महीना आप कैसे देख रहे हो स्टील प्राइस? डू यू सी स्टील प्राइस करेक्टिंग फ्रॉम हियर ऑन और डू यू सी स्टील प्राइस गोइंग अप फ्रॉम हियर? कैसा मतलब, बिकॉज आई एम जस्ट वरीड अबाउट इन्वेंट्री लॉसेस।
सो ऐसा है कि स्टील में प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है बहुत लंबे समय के लिए, बट यहाँ से मुझे लगता है मार्च तक जो है बहुत ज्यादा इसको बचा है नहीं, और ये प्राइस रेंज जो है पिछले मैंने भरते उसी लेवल की है 46,000-46,500 के आसपास, और मुझे लगता है ये मतलब बॉटम प्राइस है फॉर एटलीस्ट अनदर 5-6 मंथ मार्च तक मुझे लगता है। कोई सब्सटेंशियल कोई चीज हो जाए दुनिया में तो देखिए उसकी तो कोई गारंटी है नहीं, बट फिर भी इन केस ऑफ सूर्य रोशनी हम लोग इसको बहुत तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे स्टील रख करके भी हमको काम नहीं करना पड़ता, और जो भी स्टील रहता है वो एज पर हमारे जो ऑर्डर बुक रहते हैं उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशनिंग करते हैं। और तीसरी बात जो है, हम क्योंकि कन्वर्टर है, हम एचआर को नहीं बनाते, तो इस वजह से वो स्टील का बहुत सब्सटेंशियल लॉस हमारे ऊपर नहीं आता, तो इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट और थोड़े प्लानिंग का ये थोड़ा ज्यादा रोल रहता है, तो वो हम समहाउ क्योंकि हमारे 4-5 बायर है तो हम मैनेज कर लेते हैं एफिशिएंटली कि हम कौन से महीने में किस से ले और क्या प्राइस का हमको एडवांटेज मिल सकता है। और अदरवाइज तो आप देखेंगे जैसे पर टन एबिटा लॉस हम 500 रुपया मान के चल रहे हैं, अदरवाइज यही होता तो वो काफी सब्सटेंशियल हाई था, तो उसको हम मैनेज करने में सक्षम रहे। तो जनरली इसी तरह का जो ही ट्रेंड ही मतलब रहता है।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आदित्य पाल फ्रॉम MSA कैपिटल पार्टनर्स, प्लीज गो अहेड।
हाय, थैंक यू सो मच सर, एम आई ऑडिबल?
यस यस, वेरी क्लियर।
सर पहली बात तो कांग्रेचुलेशन, थोड़ा सा हम चूक गए, जो हमने लास्ट क्वार्टर बोला था 2,140 करोड़, ये क्वार्टर थोड़ा सा चूक गए, बट गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल सर, अब अच्छा लगा देख के दैट हम लोग कमबैक करे। सर मेरा क्वेश्चन ब्रॉडली स्टील पाइप सेगमेंट पे ही है, तो अभी मैं जब देखता हूँ तो हम रफली 60,000 पर मंथ से लेके भी 67,000 पर मंथ गए, 68,000 पर मंथ वॉल्यूम, एंड हमारा जो कैपेसिटी है जो अपने विराज भाई को बोला था पहले दैट 13.5 लाख का हो गया, तो उसका मतलब हम रफली 330,000 पर टन कर सकते हैं, तो अभी मैं इसको कैसे देखूं, मतलब हाउ डू वी गो अबाउट फ्रॉम हियर, बिकॉज अपने गाइडेंस तो कम कर दिया है बट आपके पास कैपेसिटी है टू सेल इट, तो थोड़ा सा मेरे को डिमांड पर्सपेक्टिव दे सकते हो कि हम क्या मतलब व्हाट आर वी नॉट डूइंग करेक्टली टू फिल द कैपेसिटी।
देखिए एक ये जो बहुत ज्यादा ग्रोथ का जो रहता है सेगमेंट वो बेसिकली जो है वो मेनली ये सेक्शन पाइप के अंदर में ज्यादा रहता है, और वो क्योंकि आप इक्वली अगर ऑल इंडिया पे आपकी प्रेजेंस है तो उसका एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। अदरवाइज जो है मैं यहाँ बैठ करके महाराष्ट्र में और जो है बाकी वेस्ट के और मतलब स्टेट के अंदर मैं माल बेचूं और उसमें मुझे रियलाइजेशन न मिले, मेरी कॉस्ट भी न निकले, तो वो बिजनेस में हम लोग करते नहीं है, ऑल्दो उसमें अंदर में वॉल्यूम मिल जाता है। तो जिस तरह से जो है कैपेसिटी ऑलमोस्ट अभी 80% के लेवल पे हम काम करते हैं और वो ऑप्टिमल रहता है इन टर्म्स ऑफ स्टील, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं उसके अंदर में। और बट जैसे इस साल भी हमने 1 लाख टन जोड़ा है और अभी अगले 6-8-9 महीने के अंदर में 1.25 लाख टन की कैपेसिटी और हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, तो उसी हिसाब से उसी सेगमेंट को जो है कैटर हम लोग कर रहे हैं और उतनी क्वांटिटी उसका एटलीस्ट जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगी उसकी 50% आ जाएगा। लेकिन इसको अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो मुझे लगता है यहाँ से जो है ऑलमोस्ट जो है 50% हमारी कैपेसिटी अगले 2-3 साल के अंदर में सेल के अंदर में भी वो रियलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो मैं क्या समझने दैट अभी हम रबली, क्योंकि आप देखोगे पिछले 6-8 क्वार्टर से हमारा वॉल्यूम क्या है जो फ्लैट है, 12-15 क्वार्टर है। तो मैं जो आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि चलो जो पहले का टाइम था हमारे पास कैपेसिटी नहीं था, अभी हम कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं एंड बड़ी कैपेसिटी आएगी FY26 एंड या FY27 में जो हम 500 करोड़ का ग्रीन फील्ड कर रहे हैं। तो
अभी तक देखो हम थोड़ा थोड़ा डी बोटल मेकिंग ही करते रहे, उसी हिसाब से उतनी कैपेसिटी बढ़ रही है और उतना ही हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसमें भी थोड़ा हम प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर लेते हैं और वो उसका रिफ्लेक्शन आपको पर्टन इबिटा के अंदर में देखने को मिलेगा इनकेस ऑफ सूर्य रोशनी लिमिटेड। और जो सब्सटेंशियल क्वांटिटी इम्प्रूव हो गई उस हिसाब से जो है कि, और तीसरी बात जैसे 75% थोड़ा कम है लेकिन 80% के आसपास अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री का ओवरऑल जो है वो भी इसी रेंज पे रहते हैं, 80% के आसपास ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहती है स्टील पाइप सेगमेंट के अंदर।
Thank you. The next question is from the line of Raj Mehta from Raj Mehta and Associates. Please go ahead.
Yeah, thank you, sir. Sir, आपने जो growth outlook दिया है, उसमें sir हमारे जो competitors है वो उनके भी सबसे highest volume थे, तो हम peers के competitors के साथ हम भी वही pace पे grow हो रहे हैं। बट हमारा आरओई और आरओसी बहुत कम होता है बिकॉज हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स इतना ज्यादा नहीं है। तो आपने जैसे प्रेजेंटेशन में भी बोला है कि आपका जो हायर वैल्यू प्रोडक्ट है उसमें आपको ऑर्डर बुक अच्छा मिला है, तो आप गोइंग फॉरवर्ड अगर हमारा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहा है इतने टाइम से, तो क्या हम मार्जिन पे फोकस करके हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा बढ़ा के हम अर्निंग्स पैड ग्रोथ ज्यादा कर सकते हैं फ्यूचर ईयर्स में? वो मेरा पहला सवाल था सर।
नहीं, अच्छा आपने पूछा। ऐसा है कि देखो आरओसी आरओई रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव हम कर ही रहे हैं और सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इस क्वार्टर में भी हुआ है, और जहां तक वैल्यूएटेड प्रोडक्ट का है हम 44-45% के आसपास जो है आज हमारा ऑलरेडी उसी लाइन पे हम लोग हैं, और ये जो इंस्टॉल नए जो कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से 55-60% के आसपास हमारा वैल्यूएटेड प्रोडक्ट रहेगा। और पहली बार आपने जो कही थी, हमारा ज्यादा फोकस इसी उसमें रहता है कि स्टील के अंदर में वॉल्यूम तो बहुत है लेकिन जो है हमारा थोड़ा फोकस प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में ये रहता है कि थोड़ा वैल्यूएटेड प्रोडक्ट हो जिसमें थोड़ा मार्जिन्स भी ज्यादा हो, तो ये है सब कुछ को हम बैलेंस करके ही मतलब चल रहे हैं। बट ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव होने का जो है मतलब जो मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, तो ये कैपेसिटी इंस्टॉल होने के बाद उस हिसाब से थोड़ा एग्रेसिवली हम लोग वॉल्यूम के पीछे भी मतलब जाएंगे।
ओके, बिकॉज अपने कॉम्पिटिटर्स अभी वॉल्यूम पे नहीं, वो वैल्यू एडेड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मार्जिन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं।
पहले हम ये भाषा हम बोलते थे, अब वो हमारी भाषा बोल रहे हैं, तो चलो ये तो अच्छा ही है।
ओके ओके, एंड सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी तो हम नेट डेट फ्री हो गए है और हम हमारा कैपेक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और हम ऑलरेडी सरप्लस कैश को सरप्लस कैश हमारे बुक्स में ऑलरेडी है, तो गोइंग फॉरवर्ड आप अदर देन डिविडेंड इसका कैसे यूटिलाइज करने करने वाले हो, बिकॉज अगर वो अपने बुक्स में पढ़ा है और हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे कोई रीजन से, जहाँ पे हमारे को अभी फिलहाल कैपेसिटी डालने के बाद भी हमको अग्रेसिव जाके ग्रोथ को फोकस करना है, तो वो बेसिस पे जो फंड्स हमारे पास फ्यूचर में आएंगे कैश फ्लो में, उसको हम कैसे री इन्वेस्ट करने वाले या उसका क्या रोड मैप है वो आप बता सकते हो तो बेटर है।
आजकल तो गवर्नमेंट का फॉर्मूला है ना DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसा है। जहां तक देखिए सूर्य रोशनी के केस में 350-450 करोड़ का आसपास हमारा पेट रहता है, और 100-125 करोड़ का, क्योंकि स्टील पाइप के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा बहुत लाइटिंग के अंदर में अगले 5 साल में करीब 40-50 करोड़ ही लगेगा। तो जो तो एक तो कैपेक्स के लिए कुछ हम लोग करते हैं, और थोड़ा जब ग्रोथ आता है तो थोड़ा इन्वेंट्री वगैरह वर्किंग कैपिटल में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और उसका मतलब थर्ड रेशियो जो है 1/3 के आसपास जो है हम लोग वो शेयर होल्डर को ही लौटाएंगे। तो जो कुछ भी पैसा कंपनी में आएगा वो चाहे प्रमोटर हो चाहे शेयर होल्डर हो, तो कंपनी तो चल इसी रही है। तो हमारी हमें जो वर्किंग कैपिटल में चाहिए, जो कैपेक्स में चाहिए, उसके अलावा किसी न किसी फॉर्म में हम जो है रेगुलर बेसिस पे शेयर होल्डर को ही वो बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। और इसीलिए इस बार भी हमने इंटरिम डिविडेंड जो है 2.5 रुपए पर शेयर का अनाउंसमेंट किया है, और फ्यूचर में भी उसी हिसाब से हम करते रहेंगे। आप देखिए हमने जैसे इस क्वार्टर के अंदर में पेट हमारा 75-80 करोड़ के आसपास था, बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट उसका ऑलमोस्ट 80% अमाउंट हमने शेयर होल्डर को ही ट्रांसफर किया है, और वो हमारे एक्शन से भी रिफ्लेक्ट करता है।
थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ सविता फ्रॉम गोल्डन सैंड्स, प्लीज गो अहेड।
कांग्रेचुलेशंस फॉर द गुड परफॉर्मेंस।
थैंक यू बॉस।
Second, I wanted to know like what sort of R&D expenses we are doing in electrical, because of and how much we are likely to get affected with this issue going in the China.
Issue कौन सा बोल रहे थे आप? एक क्या मतलब innovation में खर्चा तो समझा, दूसरा part क्या बोल रहे थे?
What is your import content in the lighting business from China?
देखिए जहाँ तक R&D इनोवेशन सेंटर जो नोएडा में है, हम लोग साल भर में जो है करीब 20 करोड़ के आसपास का 18 से 20 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करते हैं इंक्लूडिंग सैलरी। एंड जहाँ तक लाइटिंग का इनपुट के अंदर में इंपोर्ट का कंटेंट होगा वो करीब करीब 30% के आसपास जो है ओवरऑल रेवेन्यू का रहता है इम्पोर्ट 30%।
So we are quite exposed to that global bagari. So what is the plan for localization there?
नहीं, उसके अंदर में दो तीन चीजें हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो इम्पोर्ट के अंदर में जो क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस प्राइसिंग जो मिलता है वो देखिए आज तो हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में यूज जो है कैपेक्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक एक जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को 500-600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहता है। सो इस जगह पे जो है गवर्नमेंट का फोकस अभी बढ़ा है इन दिनों, तो फ्यूचर में मुझे लगता है 4-5 साल जाकर के जो है शायद तो वो रिफ्लेक्ट करे हिंदुस्तान में अवेलेबल हो, और इसमें काफी रेयर अर्थ का भी मटेरियल भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बट वी आर कंफर्टेबल, और हमारे पास सिर्फ हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी नहीं है, सो मल्टीपल कंट्री से हम जो है मल्टीपल सोर्सेस से हम इंपोर्ट करते हैं, और पिछले कई सालों से हम डिकेड से करते आ रहे हैं, तो ऐसे जैसा कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल इंडस्ट्री का भी ट्रेंड यही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे केस में है, रादर हम पहले काफी इम्पोर्ट जो है प्रोडक्ट SKD फॉर्म में भी हम इंपोर्ट करते थे, वो सब हमने इंडिजिनस कर लिया है, और जो कुछ भी लाइट सोर्स के मटेरियल आइटम्स है वो ऑलमोस्ट टू द 100% ट्यून में हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसके कारण ओवरऑल जो है मार्जिन के अंदर में इम्प्रूवमेंट हुई है। और जहां पहले हम लोग रिप्लेसमेंट जो है
एवरेज में 7-8% 9% तक साल मतलब रहता था, वो आज घट करके 2% तक आ गया है बिकॉज हमने सब कुछ प्रोडक्ट जो है इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। सो ये है और गवर्नमेंट का भी उसमें थ्रस्ट है क्योंकि आफ्टर ऑयल जो है ऐसा कहते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में काफी इम्पोर्ट हिंदुस्तान में आता है, तो अगर गवर्नमेंट उसके अंदर में जैसे आसाम के अंदर में यूपी के अंदर में कुछ कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है तो उसका बेनिफिट मुझे लगता है जाकर के बाद में मिलेगा, लेकिन आज इमिडिएटली तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अगले 2-4-5 साल तक कुछ हो सकता है।
थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल टेक दिस एज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। And I now hand over the conference over to Mr. B.B. Sehgal for closing comments.
Thank you everyone for the call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank our MD Trust and the CEOs for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. And any further queries, you can contact SGA, our investor relation advisor. Thanks, good evening.
Thank you very much.
Thank you very much. On behalf of Surya Roshni Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us and you may now disconnect your lines.